끝까지 있나?
저 우아야 되나?
왜 그것도 가이에나?
군주 타자오.
비행기 보고 싶나?
그치 가이에나? 군대 아코.
그이 갈 거로는 지.
السلام علیکم سامعین، پروگرام ہے کچھ تو کہیے، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز، حسب معمول ایک اچھی سی مہمان ہمارے ساتھ ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان سے بات چیت شروع کریں، ایک جھلک اس ریکارڈنگ کی۔
ہمارے خاندان میں کہاں رہی ہے یہ روایت کہ لڑکیوں کو اس طرح مردوں کے ساتھ پڑھایا جائے؟
تو بھائی صاحب آپ ہی جا کے سمجھائیے نا ان کو، ان کی تو بالکل نہیں چلتی۔
اس خاندان میں تم پہلی لڑکی ہو جو لڑکوں کے ساتھ پڑھنے اپنے گھر سے باہر جا رہی ہے۔ بس بیٹا میرا سر نہ جھکنے دینا، خدا نہ خاصہ تم سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں اور تمہاری بہنیں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی۔
کیا ضرورت تھی ایم بی اے کروانے کی؟
کون سا تیر مار لیں گی؟ ایسا کون سا تیر مار لیں گی وہ جو ان کی ماں نے مار لیا؟
انہیں معلوم ہے کہ مشکل کے وقت ان کا باپ ان کے کام نہیں آنے والا۔
سامعین، یہ جھلک تھی ہم ٹیلی ویژن کے انتہائی مقبول ڈرامے زندگی گلزار ہے سے، اور اس پروگرام کی ڈائریکٹر اور ہم ٹیلی ویژن کی سی ای او سلطانہ صدیقی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم سلطانہ۔ سلطانہ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ نیلوفر میرا خیال سلطانہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ان کو آواز نہیں آ رہی سلطانہ کو، یا ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی، تو ہم دوبارہ ٹیلی فون کرتے ہیں۔ اور سامعین اس دوران میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں، سلطانہ صدیقی جو ہیں ایک انتہائی معروف نام ہے اور ٹیلی ویژن کی دنیا میں، اور ہمارے بہت سے سننے والے جو کہ کیبل یا ڈش نہ ہونے کی وجہ سے محروم رہتے ہیں پروگراموں سے، ٹیلی ویژن کے بہت سے مثلاً، میرا خیال ہے ہم وہ نہیں سن سکتے ہوں گے، لیکن پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام اگر وہ سنتے رہیں تو سلطانہ صدیقی ایک طویل عرصے تک وابستہ رہی ہیں پاکستان ٹیلی ویژن سے، اور آپ نے ان کی بہت سی تخلیقات سنی ہوں گی، ہم اس بارے میں ان سے بھی بات کریں گے۔ ہم چلتے ہیں اس سے پہلے، آپ ہاں پلیز آپ ہمارا مفت ٹیلی فون کا نمبر یاد رکھیں۔ اچھا اچھا سلطانہ بڑی پیاری سی آواز آئی ہے آپ کی ابھی کہیں بیچ سے۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم۔
میں نے آپ کی ساری تعریفیں جو بیان کر دی آپ نے سنی ہی نہیں ہے، اور کیونکہ اس وقت ہم دوبارہ سے آپ کو ٹیلی فون کر رہے تھے۔ بہرحال میں اپنے سننے والوں کو یہ بتا رہی تھی کہ آپ کو سلطانہ، بلکہ آپ کو بھی میں بتاؤں کہ اس پروگرام میں یہ کال ان شو ہے، بہت سے سننے والے دور دراز علاقوں سے فون کریں گے، مگر فاٹا سے اور ایسی جگہوں سے جہاں پہ ڈش یا کیبل نہیں پہنچتا۔ تو میں انہیں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ سلطانہ صدیقی جو ہیں وہ صرف اب بھی معروف نہیں، بلکہ پاکستان ٹیلی ویژن کی ایک انتہائی مقبول یہ پروڈیوسر اور ڈائریکٹر تھیں، اور بہت سے لوگوں نے ان کے پروگرام سنے ہوں گے۔ تو سلطانہ میں نے شروع کیا تھا آپ کے زندگی گلزار ہے جو پلے تھا، اس سے آپ نے اگر وہ جھلک سنی تھی۔ مجھے مطلب ایسا لگا، آپ نے 11 سال بعد یہ ڈائریکٹ کیا تھا پروگرام، جو رائٹر ہوتے ہیں
جی،
مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز پروڈیوس کرتے ہیں، اگر رائٹر ہوتے ہیں لکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی ایسا کردار ہوتا ہے جو ریفلیکٹ کرتا ہے ہماری اپنی اسٹرگل کو اور زندگی کو، تو اور شاید اسی لیے وہ کہانی ہمیں اچھی لگتی ہے۔ تو سمجھتی ہیں آپ کے زندگی گلزار ہے میں ایسی کوئی بات تھی؟
اس میں یہ ہے کہ مسائل ہیں، اور اسپیشلی جو بیٹیاں، آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں موسٹلی، میں نے تو دیکھا دنیا بھر میں ہی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں
جی सुल्ताना, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी लाइन में कुछ आवाज आ रही है?
मुझे भी महसूस हो रहा है।
अच्छा, हम ये करते हैं कि हम दूसरा टेलीफोन नंबर जो बेटे का है आपके हमारे पास, हम वो टेलीफोन नंबर पे आपको कॉल करते हैं। हो सकता
है ये लाइव है?
जी जी, ये लाइव जा रहा है शो, लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारे टेलीफोन की हमारे सुनने वाले आदि हैं इसके कि होता रहता है। तो आप एक मिनट अगर बंद करेंगी तो हम फोन करते हैं दूसरे वाले नंबर पर। मुझे उम्मीद है कि उससे और नंबर को तो सामीन सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा को हम दोबारा मिलाने की कोशिश करते हैं। हम अपने कॉलर्स को लेते हैं। हमारे साथ हैं जफर इकबाल विहाड़ी से। जी जफर इकबाल,
अस्सलाम बाजी।
जी वालेकुम सलाम भाई।
जफर इकबाल जी, बाजी जफर इकबाल उड़का विहाड़ी से अर्ज कर रहा हूँ जी।
जी भाई कैसे हैं?
तो बाजी मोहतरमा सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा को मेरा सलाम जी, तो जी। और तमाम सामीन इकराम को सलाम बाजी। आप तो पाकिस्तान में ना जी, लोग खा कोई गरीब है या अमीर है, ये मतलब है कि ट्रेंड बन गया कि अपनी बच्चियों को आला तालीम लोग दिलवा रहे हैं, जितनी किसी की अप्रोच होती है जी।
हाँ।
तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि बेटियों की तालीम बहुत जरूरी है जी।
जी बिल्कुल सही बात है। और ये जो
बाजी आपका प्रोग्राम सुनने वाला ना जी।
हाँ।
बहुत आपका प्रोग्राम का फैन है जी, राजा सफदर साहब तला गंग कोट सारंग से जी, वो आपको सलाम कह रहे हैं।
जी वालेकुम सलाम। मेरी तरफ से सुल्ताना साहिबा के लिए कोई सवाल
जी? सुल्ताना साहब से ये सवाल है कि पीटीवी के अलावा जो मतलब है मशहूर और चैनल हैं, उनमें भी इन्होंने कोई प्रोग्राम मतलब इनके पेशकश है प्रोग्राम की?
अच्छा सुल्ताना जो है पीटीवी से तो वाबस्ता नहीं है, तवील अरसे पहले वो छोड़ चुकी हैं टेलीविजन, और उन्होंने अपना अच्छा। चैनल शुरू किया था हम टेलीविजन, आप तो जरूर देखते होंगे।
अच्छा, हम इनका है
जी,
ये तो हम देखते रहते हैं।
और अगर आपने इनका ड्रामा सुना हो जिंदगी, मतलब ड्रामे तो हमसे बहुत मकबूल ड्रामे होते हैं, लेकिन जिंदगी गुलजार है वो इन्होंने खुद डायरेक्ट भी किया था। तो
अब निलूफर
मिलाने की कोशिश करी, निलूफर मिल गई सुल्ताना साहबा, तो आप दूसरे उसी पहले वाले पे करके देख लेते हैं। अच्छा तो आप हमारे साथ रहिए जफर, जैसे आती हैं सुल्ताना बात करवाती हूँ मैं आपको। निम्मी हमारे साथ हैं भावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम निम्मी, कहाँ गायब हो गई थी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे?
मैं आपको साहब का ईद मुबारक भी देती हूँ, क्योंकि मेरा मिलता नहीं था, मैं सो जाती थी बहुत जल्दी।
अब साहब मुझे बकरीद की मुबारकबाद दे दें, वो ज्यादा करीब आ गई।
चले एडवांस उसकी भी दे देती।
सही बात है, मैं भी यही करती हूँ। आप वाली मेरी भी हालत यही है, टेलीफोन आमतौर से करने की चोर हूँ, तो मैं लोगों को एक ईद की पेशगी और एक ईद की माफी के साथ।
आप तो मसरूफ बड़ी होती हैं, आपको तो घर का भी काम करना होता होगा, बाहर का भी करना होता होगा, हर तरह से जब बाहर जाते हैं उसकी लाइफ बिल्कुल मुख्तलिफ होती है।
हाँ, ऐसा
तो
है।
आपको हर तरह का काम करना पड़ता है। ये मेरी आज बड़ी खुश नसीबी है कि सुल्ताना आपस से बात करूँ। मुझे तो ये गुड़िया जस्ट लाइक एक डॉल।
रुके रुके एक मिनट निम्मी, निम्मी निम्मी एक मिनट, ये सारी बातें सुल्ताना को आ जान दीजिए, वो वाकई ये सब वो डिजर्व करती हैं सारी चीजों का। तो मैं चाहती हूँ कि वो सुने कि उनके चाहने वाले उनके लिए क्या क्या कहते हैं।
मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आज मैं उनसे बात कर लूँ। अल्लाह ताला करवा दे तो बहुत उसकी मेहरबानी होगी।
वो पता नहीं इतनी खराब लाइन मिली थी, उसमें इतना शोर था, तो मैंने कहा कि उनको उसको बंद करके दोबारा से हम करते हैं। अच्छा निमी, जितने सुल्ताना आती मुझे ये बताइए कि आपने वादा किया था कहानी भेजने का, कहाँ है कहानी?
मैं आपको बता रही हूँ, मैं 9 बजे तो रात के सो जाती हूँ, सुबह जो होते हैं अपने घर के काम किए बस उसी में वक्त गुजर जाते हैं। हाँ। सही मैंने वादा किया था।
हाँ।
बस इसी में वो वक्त गुजर गया बस। करूँगी इंशाल्लाह, मैं आपको जरूर भेजूंगी। और आप जब पाकिस्तान आए तो आप रابطہ जरूर रखिएगा जब भी आए।
मैं जरूर आपसे रابطہ रखूंगी। और हमारी सुल्ताना वापस आ गई। सुल्ताना मेरे साथ भावलपुर से कॉलर है, निम्मी नाम है इनका, और इन्होंने आपके लिए कुछ इतनी अच्छी अच्छी बातें शुरू की तो मैंने नहीं चुप करा दिया। मैंने कहा नहीं सुल्ताना से कहिएगा आप। मैं
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम
वालेकुम
अस्सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही?
जी जी बिल्कुल साफ आ रही है। निम्मे बोलिए।
अच्छा अस्सलाम वालेकुम
आवाज जी आ रही है। निमी आपने जो आपने जुमले क्या कहे थे इनके लिए, वो कहिए क्या कह रही थी?
मैं कह रही थी ये मुझे ना जस्ट लाइक एक डॉल लगती हैं, बड़ी प्यारी लगती हैं। और मेरा तो चाहता है मैं आपसे मिलूं, जब भी कराची जाऊं तो मुझे मेरे बहुत शौक है आपसे मिलने का।
जरूर आइएगा हम टीवी पे, मैं जरूर मिलूंगी आपसे। नाम क्या है आपका?
मेरा नाम नम्मी है।
निम्मी जैसे फिल्म स्टार निम्मी थी ना, इन्होंने नाम छुपा रखा है सुल्ताना, अभी तक मुझे इनका असली नाम नहीं मालूम है क्या है।
मेरा असल नाम जो है तौकीरा कमाल।
तौकीरा कमाल, अच्छा तो ये सुल्ताना की बरकत है कि आपने आज नाम बता दिया, वरना आपने मुझे नाम नहीं बताया था।
जो हमने आप आती थी तो उनके साथ ना खुशबख्श शुजा साहब के साहबा के साथ आई थी, वो भी प्रोग्राम मुझे आपका बड़ा ही अच्छा लगा। बस मुझे आप गुड़िया लगती, मैं क्या करूँ।
बस सुल्ताना, अब मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि आज से पहले ये मेरी फैन थी, लेकिन आज मुझे मालूम हुआ कि नहीं, दरअसल ये आपकी फैन है।
अरे ये तो मेरी खुशनसीबी होगी। अल्लाह इनको सेहत दे, उम्र दे, और इसी तरह ये चहकती महकती रहे।
बस अब उनकी लाइन भी ड्रॉप हो गई है और दोबारा सब मिला रहे हैं उनको। नीरो, इनसे लैंडलाइन का नंबर अगर कोई हो तो वो भी ले लीजिए, तो उसमें ज़्यादा है। तो सामीन, अब मैं क्या करूँ अगर म्यूज़िक का प्रोग्राम होता। चलिए हम प्रोमो आपको सुनवा देते हैं, अगर नीलोफर चाहें तो एक प्रोमो हमारे प्रोग्राम का, मेरी गाने का। लेकिन बहरहाल इससे पहले मैं आपको नंबर बता दूँ जिस पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, 0800-7779। ये हमारा मुफ्त टेलीफोन है जिस पे आप टोल फ्री कर सकते हैं। और चलिए प्रोमो सुन लेते हैं।
आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है। मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज़ में उर्दू रेडियो, टेलीविजन और वेब पर सुनाएंगे।
हर माह 3 मुंतखब कहानियों पर बड़े इनाम दिए जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहिक होगी।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं, urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है, मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है, मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज़ पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
तो सामीन, इंतजार रहेगा जैसा कि कहा प्रोमो में आपके खतों का, और जब कहानी भेजें तो कॉपी हमें अपने पास रखिएगा। सुल्ताना मेरा ख्याल है वापस आ गई हैं, बड़ा आँख मिचोली हो रही है हमारी उनके साथ। सुल्ताना आप हमारे साथ हैं? आप
जी? जी मैं हूँ।
अच्छा चलिए सुल्ताना, बजाय कॉलर्स को लेने के तक, वरना आपसे कोई बात ही नहीं हो सकेगी, आप पहले तो मुझे ये बताइए कि लाहौर में इस वक्त ज़बरदस्त आपका कोई फेस्टिवल होने वाला है कल से या आज से शुरू हो चुका है, फूड फेस्टिवल जो है।
जी मैं उसी में थी जब आपने अभी पहले रिंग किया, तो मैं अभी निकल रही थी वहाँ से। अच्छा। तो खैर होटल तक मैं पहुँच गई हूँ। बहुत कामयाब जा रहा है माशाल्लाह से हमारा जो ये फैमिली फेस्टिवल है, और मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान में लोग बेचारे तरसते हैं इन चीज़ों को। बहुत अच्छा माशाल्लाह। और अभी मुझे कोई बता रहा था कि ज़ुबैदा तारिक की हमने वहाँ पे किताब रखी थी, जो वो उनकी जो रेसिपी बुक
जी जी जी,
वो भी 1,00,000 के करीब जो है जो हमने प्रिंट की थी हम टीवी ने, मसाला टीवी ने
जी,
तो वो इतनी बिकी है कि अब हम सोच रहे हैं कि कल के लिए बाकी बची हुई है या कराची से मंगा। तो माशाल्लाह यहाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जा रहा।
1,00,000 किताबें बिक गई हैं आपकी?
जी 1,00,000 बिकी नहीं है, 1,00,000 की भी, 1,000 की एक थी, तो आई डोंट नो वो कितनी।
अच्छा लेकिन बहुत
990 यानी शाम को ये बिकी है 990, जो कि हमने बुक के लिए तो नहीं किया था ये फैमिली फेस्टिवल, और बहुत सी चीजें थी। लेकिन अभी अभी आपका जो टेलीफोन खटा था बीच में, तो वहां से टेलीफोन यही आया कि आप इतना सक्सेसफुल जा रहा है, इतनी बुक्स भी बिकी हैं, लोग खुश हैं और झूले चल रहे हैं और फैमिलीज, तो ये चीजें देखने को जो है ना पाकिस्तान में अब लोग जो है बेचारे तरसते ही है।
बिल्कुल बिल्कुल,
सब चीजें हो जाए
बिल्कुल, और जब हो जाती है कोई बखैर खूबी तो सब
जिसे... आप पूछ रही थी कि ये मैंने 11 साल बाद जो है ये
वापसी जो है। जी जी,
तो बस वही जो मैं बता रही थी कि बच्चियों पे जो घर के जो माहौल होता है उसके कितना असर पड़ता है। अगर बाप दूसरी शादी कर ले या बेटियों से उस तरह का ताल्लुक ना हो जिस तरह अपनी बेटियों की तरह, तो बिटरनेस जो आती है
जी,
वो बस एक कैरेक्टर को देखा जो एंड में बाद में रियलाइज करती कि अल्लाह ने हमें इतना कुछ दिया, हम उसका शुक्र नहीं करते, हम छोटी छोटी बातों से इतनी बड़ी बड़ी नेमतों को भूल जाते हैं। एंड रिजल्ट उसका ये था, इट वॉज अ ब्यूटिफुल प्लेस। तो मेरे दिल से वो कैरेक्टर जो था ना, था कि ये जरूर जाना चाहिए।
बहुत अच्छा सा है, और उमैरा लिखती बहुत अच्छा है, असल में बहुत प्लेस उनके अच्छे होते हैं, जो प्लेराइट बहुत अच्छी है,
बहुत अच्छे मौजू और इतने साफ सुथरे वो लिखती है, और इतने ये लोग कहते हैं ना कि जी ये मैसेजेस जो हैं उसको अगर इस तरह से करें तो शायद उतना खूबसूरत ड्रामा नहीं बनता, लेकिन नहीं, ड्रामा जो आप सोसाइटी से कैरेक्टर्स उठाते हैं
जी जी,
तो वो फिर बंदों को फील होता है एकदम,
बिल्कुल सही है।
हाँ ये हम एग्जैक्टली ये है।
अच्छा मैं सुल्ताना विकिपीडिया,
आप बताएं कैसा मौसम जा रहा है वहाँ पे?
यहाँ आज तो कुछ थोड़ी थोड़ी ठंडक है, लेकिन इसका भी हाल कुछ अब कराची जैसा हो गया है कि कुछ गर्मी में यानी पहले ये इस्लामाबाद जैसा मौसम था यहाँ कि गर्मी में गर्मी सख्त, सर्दी में सख्त सर्दी, मगर अब कभी कभी सर्दी में भी बिल्कुल कराची का सा समा होता है कि सर्दी होती नहीं है और गर्मी में कभी गर्मी नहीं होती, तो बस ऐसा ही है मिला जुला। अच्छा लाहौर का कैसा मौसम है?
तो जी
लाहौर में कैसा मौसम है आज?
लाहौर में भी अच्छा था, आज बादल बादल थे, थोड़ी ड्रिजलिंग भी हो रही थी, लेकिन धूप दोपहर को वो भी एकदम निकल आई, तो उस पे भी सारे लोग बैठे हुए तो हम हैरान थे ये क्या, लेकिन मौसम अच्छा है, मौसम अच्छा है।
अच्छा तो कहाँ अच्छा आप लोग कहीं ओपन एयर में कर रहे हैं अपना फेस्टिवल? किस तरह का फेस्टिवल है ये?
हम दो तरीके से, हमने यहाँ पे अगर आपको पता हो कि एक्सपो सेंटर जिसे कहते हैं, बहुत बड़े बड़े हॉल्स हैं, उसमें हमने बहुत बड़े स्टॉल लगवाए हैं, 120 कोई स्टॉल्स लगे हैं या शायद उससे भी ज्यादा, और फिर बाहर जो है हमने डिस्प्ले किया है मसाला फूड जो हमारा चैनल है, उसके सारे हमारे शेफ्स आए हुए हैं, जुबैदा तारिक, शीरीन अनवर, जाकिर, तो वो कुकिंग लाइव कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, ऑटोग्राफ दे रहे हैं। फिर दूसरी तरफ हमारे आर्टिस्ट हैं, वो खुले में हैं, ओपन में स्टॉल्स अंदर हैं, और वो जो हैं परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे शायदा मिन्नी है, फ्रिया है, और शायद इब्रार या कुछ और लोग भी आएंगे, तो इस तरह से जैसे पहले किसी जमाने में होता था, मैं तो यूं कहूंगी जब हम भी छोटे थे, इस तरह के बड़े बड़े मेले जिसे कहते हैं ना मेला,
हाँ, सही, सही,
बड़े
सही।
बड़े झूले लगे हुए हैं, तो ये चीजें हैं।
और उस वक्त क्योंकि ये इतना एक्सपोजर नहीं था, चीज इतनी सारी चीजें भी नहीं थी जिंदगी में, तो वो एक बहुत बड़ी एक इवेंट होता था जिसका कोई मेला लगता था या कोई चीज होती थी, तो
लेकिन ये आप सही कह रही हैं, इतनी वो चीजें नहीं थी तो हमारे लिए तो वो बहुत बड़ी चीज होती थी, लेकिन अब जो है ना, लेकिन पहले पीस बहुत था, खामोशी मैंने अमन या ये, अब जो है ना अब डर लगता है, जहाँ पे भी ज्यादा लोग हों तो जरा डरे डरे से रहते हैं, बस ये
है,
एक जो बड़ा फर्क आया है। हाँ
तो कराची में भी आपने कभी कुछ इस तरह का किया जिस फेस्टिवल जैसे यहाँ किया है या पहली दफा कर रही हैं?
जी अगर याद हो कि पता नहीं हमारा यहाँ पे हम टीवी तो चलता है तो देखा होगा कि हम लोग एक तो बहुत बड़ा ब्राइडल कचौर जो है वो करते हैं, ब्राइडल वीक करते हैं।
अच्छा
और वो उसमें फैशन और ये सारा कुछ होता है, उसके बाद ये इस तरह का फैमिली फेस्टिवल भी मसाला टेलीविजन जो है उसकी तरफ से करते हैं, और वो हम टीवी और जो फैशन शोज है वो हम टीवी और ये जो हम 360 के हवाले से करते रहते हैं।
अच्छा
तो होता रहता है।
मैं सुल्ताना यही आपसे बल्कि पूछना चाह रही थी क्योंकि टेलीविजन नेटवर्क्स बहुत से हैं वहाँ पर और बहुत बड़े बड़े भी हैं और बहुत कामयाब भी हैं, लेकिन मुझे ये ऐसा लगता है कि ये जैसे कि आपने बताया ब्राइडल कटोर या जो फैशन शोज़ हैं या इस तरह के फेस्टिवल जो आप कर रहे हैं, शायद अगर हम की जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं कोई औरत ना होती, यानी सुल्ताना सिद्दीकी, तो इस तरह ये बड़े सलीके के फंक्शन है. मतलब ये ऐसे हैं जो एक पूरा ख़ानदान बना रहे हैं, जैसे एक नेटवर्क को एक बड़े से ख़ानदान में बदल रहे हैं ये. और फिर मैं सुनती हूँ आपके चाहने वालों से, कईयों से जो आपके लिए प्रोड्यूस करते हैं, रिफत हिमायूं हैं और उस तरह के कई लोग, मतलब वो जब आपकी बात करते हैं तो वो बिल्कुल वाकई वो सुल्ताना पा कह नहीं रहे होते, वो दिल से समझ रहे होते हैं कि ये उनकी सुल्ताना पा है.
Exactly.
तो कैसे, ये बहुत बड़ी कामयाबी आपकी जो आपने अचीव की, कैसे की?
मैं एक बात बताऊं सेना के, मोस्टली हमारे पास जो ये बात आप सही कह रही हैं कि एक तो वहाँ पे खवातीन बड़ी कंफर्टेबल होती हैं, शायद वो आप सही कह रही हैं कि खातून की वजह से शायद जो एक होता है ना फैमिली एटमॉस्फेयर, और दूसरा ये कि ज़रूरत कि किस तरह खानदानों या फैमिलीज को है उनकी इंटरटेनमेंट की ज़रूरत, तो वो एक औरत ज़्यादा फील कर सकती है क्रिएटिविटी ये एस्थेटिक. तो वो मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मेरी वजह से ये हो रहा है कि मेरी बहुत से जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो ख़वातीन हैं. हम टेलीविजन को भी मैमूना सिद्दीकी, वो मेरी बहू, वो मेरी बहू जो है मोमिना दुरैद है, तो वो चला रही है, हेड कर रही है मैमूना सिद्दीकी. और जो आप अभी कह रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत से राइटर्स को भी इंट्रोड्यूस किया, जैसे उमेरा नॉवेल तो लिखती थी
जी,
लेकिन इस तरह के प्लेज और वो जो है वो फिर समीरा फजल है, नूरुल हुदा भी पहले लिखती थी लेकिन फिर बाद में हमारे लिए बहुत ज्यादा लिखा, मुमल लिखने लगी, मोमिना लिखने लगी, सीमा है, तो इस तरह के माहौल में वो ज्यादा कंफर्टेबल भी हो जाती हैं.
दुरुस्त,
तो ये है.
अच्छा मैं दो कॉलर्स को ले लूँ अब, आपका मुझे लगता है कि अब लाइन ठीक ठाक है और इंशाल्लाह कटेगी नहीं. तो अब्दुल हनान है हमारे साथ हासिलपुर से. जी अब्दुल हनान, अस्सलाम वालेकुम. हनान, हनान क्या पूछना चाहेंगे आप?
जीत कहूँगा.
जी जी जी.
और इनसे मैंने ये सवाल पूछना कि हम टीवी ने बहुत से थोड़े वक्त में बहुत सारा बड़ा नाम माशाल्लाह बना लिया है मीडिया में, स्पेशली पाकिस्तानी मीडिया में, और फॉरेन भी बहुत देखा जाता है. इनसे मैंने ये सवाल पूछना है कि जो इस वक्त के जो टीवी चैनल्स हैं जो पाकिस्तानी सकाफत को हटा के फॉरेन कल्चर को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और जो हमारे माशरे से रिलेट ही नहीं करती हैं वो स्टोरीज और वो चला रहे हैं, उन टीवी चैनल्स या उन स्टोरीज के हवाले से आपका क्या मौकफ है? और दूसरा, जो न्यू टैलेंट है स्पेशली पाकिस्तान के रेयर एरियाज में, जो जिस तरह सदरन पंजाब है या बलूचिस्तान है, वहाँ के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को आगे लाने में हम टीवी क्या रोल प्ले कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच.
शुक्रिया जी. सुल्ताना
सलामकुम एंड शुक्रिया आपके सवाल का. दरअसल जो आपने कहा कि फॉरेन जो मटीरियल चीज़ें आ रही हैं, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है. कल्चर तो अब सबका इतना मिक्स हो रहा है, लेकिन हम टीवी ने हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखा है कि हमारे माशरे की कहानियाँ, हमारा कल्चर और औरत को किस तरह से जो हमारा ड्रामा होता है उसके जरिए कि किस तरह से बावकार या बुलंद कैरेक्टर या इस तरह से दिखाएं, उसको हमने हमेशा आगे किया है. बाकी रहा आपका दूसरा सवाल कि अगर हम फॉरेन के ड्रामे लाते हैं.
नहीं नहीं, इन्होंने तो ये पूछा है
उनका कल्चर.
नहीं, फॉरेन के ड्रामे नहीं, आपने जवाब दे दिया. जो जो सवाल इनका यही था कि इनका ख्याल था कि जो इन्फ्लुएंस है बढ़ रहा है. और मैं थोड़ा सा सुल्ताना यहाँ ये भी ऐड करना चाहूँगी, जो आपने भी शुरू में बात कही कि बात यह है कि एक पॉप कल्चर होता है, जो पॉपुलर कल्चर है उस वो अब उतना मशरक़ी नहीं रह गया. लोगों को ये समझना चाहिए इस बात को, ना तो ज़बान उस तरह की अब बिल्कुल सिक्का बंद और एक जो बिल्कुल क्लासिकल ज़बान थी, उर्दू ख़ुद उसकी शक्ल भी तब्दील हुई है. और इसीलिए हमें टेलीविज़न ड्रामों में भी ये ज़रूर एक शौरी तौर पे नहीं बदलना चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है जो ज़बान बोली जा रही है उस पूरे माशरे में, تو اس وہی زبان ڈراموں یا کسی بھی پروگرام میں دکھائی جائے گی. سوال ان کا دوسرا یہ تھا کہ جو ریموٹ علاقوں کے لوگ ہیں جیسے بلوچستان کے یا جنوبی پنجاب وغیرہ کے, کیا ہم ٹیلی ویژن ان کو اس ٹیلنٹ کو لانے میں سامنے کوئی کام کر سکتا ہے؟
جی, اس میں دیکھیں جو جب ریموٹ ایریاز ہیں تو اس میں سے ویسے بھی دنیا میں ہر جگہ اور یہاں تو خصوصاً کہ کم عورتیں اور لوگ نکلتے ہیں, لیکن جب بھی وہ آئے ہیں, اور ابھی میں کوئٹہ سے کافی خواتین جو ہیں وہ ڈرامہ کر رہی ہیں, پشاور سے کر رہے ہیں, لیکن اگر چھوٹے علاقے سے بھی آتے ہیں اور وہ ٹیلنٹیڈ ہوتے ہیں تو ہم ان کو موقع ضرور دیتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے پاس کوئی ایسا ادارہ یا انسٹیٹیوٹ نہیں ہے جو سکھا سکے, اور پھر ماحول بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ پیرنٹس ریموٹ ایریا سے اس کام کے لیے بھیجیں. لیکن پھر بھی اب یہ اچھا یعنی سمجھا جا رہا ہے, یہ میں ٹیلی ویژن کی بات کر رہی ہوں, ویسے تو میڈیا میں آپ کو پتا ابھی تک بھی اس طرح کے طبقے جو ہیں میڈیا کو اچھا نہیں سمجھتے, لیکن اب اس کو بھی ایک باقاعدہ باعزت پروفیشن میں تھوڑا بہت لینے لیا جا رہا ہے ریموٹ ایریا میں, شہروں میں تو ہے ہی. تو آئی تھنک کہ وہ آتے ہیں, ہم تو ان کے لیے موقع فراہم بھی کرتے ہیں اور یہ چیز کرتے ہیں, لیکن اب ان لوگوں کو بھی شعور آ رہا ہے تو زیادہ آئیں گے تو زیادہ موقع ملے گا.
اچھا, بلوچستان کی بات ہو رہی تھی, وہیں کے علاقے کوہلو سے ثناء اللہ کا فون ہے. جی ثناء اللہ, السلام علیکم.
وعلیکم میڈم.
جی کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام.
میڈم ثناء اللہ مری بول رہا ہوں, ڈسٹرکٹ کوہلو بلوچستان سے.
جی بھائی.
کہہ رہی ہوں آل ڈسیبل آرگنائزیشن سے.
اچھا
میڈم, آپ کا جو پروگرام ہے یہ تو اتنا آپ مطلب آپ اچھا پروگرام کرتی ہیں, مطلب ہر دم عزیز پروگرام ہوتے ہیں. یقین کیجئے کہ میں دو تین دن پہلے کہانی سنا تھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ آپ اتنا اچھا پروگرام پیش کر رہی ہیں.
اچھا, آپ دوسرے میری کہانی کی بات کر رہے ہیں؟
میں میری کہانی کی بات کر رہا ہوں. دوسری بات یہ میڈم, ایک سوال ہے اور ایک شکوا بھی.
جی جی ضرور.
اچھا, شکوا یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے 18 معذور افراد کو محکمہ پولیس نے جبرن کوئٹہ میں نکال دیا ہے. وہ 1.5 مہینے ہو گئے وہ بیٹھے ہوئے ہیں پریس کلب کے سامنے کیمپ لگا کے, کبھی ان کو گرفتار کیا جاتا ہے, کبھی ان کو رہا کیا جاتا ہے. تو آپ کی دنیا نے مطلب وائس آف امریکہ میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا.
اچھا,
بی بی سی میں ان کی رپورٹ کی گئی ہے ہر جگہ پہ, لیکن جیو میں بھی, اور وائس آف امریکہ نے.
ثناء اللہ آپ بے فکر رہیے, میں بالکل آپ سے وعدہ کرتی ہوں, ہمارے کاکڑ ہیں وہاں پہ نمائندے اور میں ضرور ان سے بات کروں گی. جی دوسرا, آپ کے سلطانہ سے کوئی, سلطانہ صاحبہ سے کچھ پوچھنا ہے آپ کو؟
جی میں سلطانہ صدیقی صاحبہ سے یہ مطلب سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے مطلب بڑے ہم ٹی وی سے ریلیٹڈ ہیں, لیکن آپ نے ڈسیبلٹی کے لیے بھی مطلب معذور افراد کے لیے بھی کوئی ڈرامہ لکھا یا ان کے لیے بھی آپ نے کام کرنے کی کوشش؟
اچھا, تھوڑا سا جتنے سلطانہ جواب دے رہے ہیں, آپ پلیز نیلوفر کو اپنا ٹیلی فون نمبر لکھوا دیجیے ثناء اللہ. جی سلطانہ, ڈسیبل لوگوں کے لیے آپ نے کوئی پلے وغیرہ کیے؟
جی ہم نے کئی پلے اس طرح کے کیے ہیں, اور ایک ہم نے, مجھے اب نام یاد نہیں ہے کہ وہ جو بچے ہوتے ہیں چھوٹے جو تھوڑے اب نارمل ہوتے ہیں ان پہ ہم نے کیا ہے کہ ان کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کرنا چاہیے, کیا یا وہ جو عورتیں ہوتی ہیں ہم وومین امپاورمنٹ میں ان کو دکھایا کہ ایک آدھی بچی کا کہ ان کو ہاتھ نہیں ہے, وہ کس طریقے سے ایک ہاتھ سے وہ جلائے, مطلب اس طرح کی بہت سی چیزیں, اور پھر اس کی اچھی جگہ شادی ہوگی, مطلب اس طرح کی ہم نے کئی کی ہیں. یہ تو مجھے ایک دو مثال یاد آتی ہیں, تو وہ ہے تو کرتے رہتے ہیں, لیکن ایگزیکٹ اگر وہ چاہیں کہ ہم ڈاکیومینٹری کی طرح, تو وہ کیونکہ یہ جس طرح کا ہمارا ڈراما چینل ہے تو اس میں اس پہ تھوڑا بہت ہی کیا جا سکتا ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ کیونکہ اب ہم نیوز چینل میں جانے والے ہیں, تو اگر میں نے وہ کیا تو اس میں کوشش یہ میں ضرور کروں کہ اس قسم کے جو مسائل ہیں ان کو ہم آگے لائیں.
ویسے سلطانہ مجھے تو, بلکہ میں ایک اگلا سوال پوچھنے والی تھی آپ سے کہ کیسے وقت میں جب میڈیا میں جو ہے کرنٹ افیئرز چھائے ہوئے ہیں پاکستان میں, اور ایک طرح سے ہم جو ہے اس میں ایک ریلیف فراہم کرتا ہے, मतलब ये कैसा स्टेशन है कि लोगों को पता है कि इसमें
मैं फॉलो नहीं कर सकी शहनाज़,
मैं कह रही हूँ कि एक ऐसे वक्त में जबकि ये जो करंट अफेयर्स है वो बहुत छाया हुआ है पाकिस्तानी मीडिया पर, और दिन रात खबरें और डिस्कशन जो कि अपनी जगह अहम है, लेकिन बहरहाल इसमें कहीं ना कहीं हम जो है उसका यह है कि वो एक एंटरटेनमेंट देता है लोगों को, और जो इंसानी ज़िंदगी की इंतहाई बड़ी ज़रूरत है, और ख़ासतौर पर एक ऐसे मुल्क में जहाँ अचानक जिन चंद सालों के दौरान डिप्रेशन एक बीमारी बन चुका है, मतलब इतने बुरे हालात हुए हैं कि लोग हैं दुखी। मतलब मैं एक प्रोग्राम करती हूँ जिसका भी जिक्र कर रहे थे मेरी कहानी के नाम से, मैं सुल्ताना आपको सच बता रही हूँ कि मैं स्टूडियो में बैठ के आंसुओं से, मतलब मेरे जब वो अपनी सच्ची कहानी सुना रहे होते हैं तो मैं काबू नहीं कर सकती कि उस कहानी पे किस तरह आप बगैर रोए रह सकते हैं, इतनी वो दुखी करने वाली कहानी, सीधी सादी बिल्कुल कहानियाँ होती हैं। तो उसमें मैं तो समझती हूँ एक बहुत बड़ा काम है जो आप कर रही हैं, और फिर उस तरह से कि वो कोई एक बहुत खोखली सी तफरी नहीं है बल्कि वो एक उसमें मौजू भी हैं, उसमें एक पहलू भी है, हमारे माशरे की झलक भी है। तो फिर ये न्यूज़ चैनल शुरू करने का ख्याल क्यों आया आपको?
मैं आपको बता रही हूँ, वो मैंने कहा शायद शुरू करूँगी तो वो भी, मैं पहली बात तो आपको ये बता दूँ कि इसमें हम टीवी जो है वो पायनियर है। पहले जब मैं ये कर रही थी और जब ये करंट अफेयर और ये न्यूज़ ही पाकिस्तान में होता था, तो जब मैं ये चैनल शुरू कर रही थी तो मुझे सब लोगों ने कहा कि प्योर एंटरटेनमेंट बिल्कुल ही नहीं चलेगा, इसमें आप कुछ आवर्स करंट अफेयर के दें, कुछ आवर्स आप न्यूज़ के दें, नहीं भी तो कम अज़ कम एक नीचे टिकर चला दें। लेकिन दुरैद मेरा बेटा जो सीईओ है और मैंने ये फैसला किया कि जब दुनिया में हर तरीके का अलग अलग चैनल होता है तो हम हाइब्रिड चैनल क्यों चलाएं, और ये भी जरूर सक्सेसफुल जाएगा। तो पहले तो हमने ये किया, इसी तरह हमने फूड चैनल 24 आवर्स का चलाया, इसी तरह 360 हमने लाइफ स्टाइल पे। हेलो
जी 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 बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है बहुत अच्छी।
अभी जो है वो न्यूज का इसलिए आया कि काफी अरसे से मेरे बेटा तो इसमें फेवर में नहीं है, मैं मुझे पता नहीं क्यों होता है कि अगर मैं कोई न्यूज अगर करूं तो मैं उसको भी एक मॉडल के तौर पे एक अच्छे तरीके से तमीज से, क्योंकि जिस तरह की न्यूज यहाँ पाकिस्तान में हो रही है कि लड़ लड़ के एक लफ्ज नहीं समझ में आता है कि अगला पूछ क्या रहा है, बोल क्या रहा है, और जो एंकर है जो होस्ट है वो भी एक पार्टी बन के बात कर रहा है, तो शायद एक वजह ये भी हो।
और
दूसरी वजह ये है कि एक बुके आपका मुकम्मल होता है जब आप पूरा सारे चैनल्स को लेते हैं ना,
जी जी,
तो एक बुके मुकम्मल होता है।
तो ये सारी चीजें जो हैं ये आप ही हैं इसकी, यानी चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं आप ही हैं इन तमाम चैनल्स की जो आपने शुरू की है, मतलब फूड चैनल जो है या
जी जी पाकिस्तान में नहीं था, मैंने किया था उस पर भी बड़े लोगों को था कि नहीं चले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका ये फेस्टिवल भी हो रहा है और 6 साल से बहुत कामयाबी से चल रहा है। उसके बाद फिर किसी और चैनल ने भी अपना फूड चैनल खोला, फिर किसी और ने खोला, दो और हैं, लेकिन वो उस तरह नहीं चलते जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह से ये चल रहा है। और अब हम इसको और भी ज़रा बेहतर कर रहे हैं, वो भी हमारा अच्छा जा रहा है, और 360 जो था उसको हम 2 में ले आए जिसमें अब ड्रामा भी हैं और फैशन शोज भी हैं और दूसरे भी लाइफ स्टाइल के शोज हैं।
तो कितने घंटे की नशरियात होती है कुल आपकी?
जी
कितने घंटे की नशरियात है आपकी टोटल?
कितने घंटे की,
कितने घंटे का प्रोग्राम होता है आपका, मुख्तलिफ जो आपके प्रोग्राम है?
हमारा लूप होता है 6 या 8 घंटे का लूप होता है।
अच्छा,
इतना 8 घंटे का लूप है जो फिर हमारा चलता है। लूप भी क्या चलता है, मतलब 8 घंटे फ्रेश चलाते हैं, फिर हम कहीं ना कहीं उसमें कोई रिपीट जो कल चला है ड्रामा वो दे दिया, कोई भी बीच में कोई और चीज एंटरटेनमेंट की दे दी, लेकिन 8 घंटे डेली फ्रेश चलाते हैं।
अच्छा सुल्ताना, से पहले कि आपसे मैं इसी बारे में कुछ पूछूंगी आपसे, लेकिन एक झलक मैं आपकी एक इंटरव्यू से पुराने सुनवाती हूँ।
मैं ये समझती हूँ कि थोड़ा टाइम आपको देना पड़ता है, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए एक तरबियत का टाइम होता है, उसमें अगर आपने तरबियत ना की तो, और इस वक्त मेरे बच्चे जो हैं वो जहाँ भी पहुँचे हैं, लेकिन एक चीज़ जो मुझे, हम लोग बहुत दोस्ती में हैं, वो मुझसे हर चीज़ डिस्कस करते हैं, मैं उनसे हर बार डिस्कस करती हूँ कि ये बात यूँ क्या हो सकती है, नहीं हो सकती, तो हमारे में वो माँ और वो वाला एलिमेंट भी नहीं है। अब मेरी बहुएं भी हैं, कभी कभी मैं सोचती हूँ, यानी ऑनेस्टली मैं ये बात कर रही हूँ, मैं कभी सोचती हूँ कि क्या मेरी बेटी होती तो क्या मैं इससे ज़्यादा चाह सकती थी। मुझे याद है पिछले दिनों मेरी किसी बहू की तबीयत ख़राब हुई एंड आई वाज सो अपसेट, मुझे समझ ही नहीं आ रहा, उस वो आई और अब मुझे लगता है कि इनके बगैर तो हम लोग बड़े नामुकम्मल थे।
तो सुल्ताना वैसे कमाल है
ये आपका। कहां से लाई आप?
बस मैं आपकी
ये
जासूस
पुराने
खंगाल रही थी कि सुल्ताना के बारे में जानने के लिए क्या कुछ करती रही आप मेरे पीछे, तो ये मुझे मिला और ये मुझे बात मालूम है आपकी, जो भी लोग आपको जानते हैं वो इस बात से वाकिफ हैं कि एक सिंगल मदर की हैसियत से आपने एक मतलब सिंगल मॉम है आप, और बड़ा कमाल के आपने बच्चे पाले अपने, उन्हें पढ़ाया लिखाया उन्हें, और फिर सबसे बड़ी बात, इससे भी बड़ी बात यह है कि एक जुड़ा हुआ ख़ानदान आपने बनाया है जिसमें अपनी बहुओं को भी बेटियों की तरह प्यार करती हैं, तो कैसे ये सब, कैसे इसमें कोई एफर्ट था आपका, शौरी कोशिश आपको करनी पड़ी, या ये हुस्न इत्तेफाक है कि सब अच्छे अच्छे से लोग आपको मिल गए, बहुएँ भी प्यारी सी मिल गई, तो ये कैसे मुमकिन हुआ कुछ बताइए।
इसमें तो मेरा ख्याल है कि एक तो अल्लाह का मैं शुक्र अदा करूंगी, दूसरा ये है कि डेफिनेटली मेहनत तो करनी पड़ती है और आपको बहुत ही डिसिप्लिन और प्लानिंग के साथ बल्कि चलना पड़ता है जब बच्चे छोटे होते हैं कि किस तरह अपने काम और अपने घर की चीजों को जो है तवाज़ुन से रखें, एक तो ये चीज और प्रायोरिटीज होती हैं कि पहले आप बच्चों को देखें उसके बाद अपने करियर को देखें, तो और जैसे आप भी कहती हैं और मैं भी कि औरत को जो है दूसरा काम भी करना पड़ता है और हर कदम पे खुद को प्रूव भी करना पड़ता है,
बिल्कुल
अच्छी माँ अच्छी वो, बाप तो कुछ भी करके चला जाए तो शायद उस पे उसका कसूर ही नहीं होता, काउंट ही नहीं करते परवरिश में उसको,
बिल्कुल।
लेकिन माँ के लिए तो फिर ये सारी चीजें ना, औरत के लिए बल्कि मैं कहूँगी, तो एक तो ये था, दूसरा मेरा ख्याल है कि बहुएं जब आती हैं तो हमें थोड़ा सा दिल बड़ा ही रखना चाहिए, उसमें कोई बड़ा फलसफा नहीं है, और उनको उनकी आज़ादी उनकी सोच उसका हमें एहतराम भी करना चाहिए, वैल्यू करनी चाहिए और उसको वो जगह देनी चाहिए। जब वो अपना पूरा घर छोड़ के आई है माँ बाप वगैरह, तो मेरा ख्याल है जब ये हम कर देते हैं ना कि उसमें फिर जो वो लड़ाई झगड़े या कोई ऐसी सबकी जिंदगी जो है वो आसान हो जाती है। और मैं एक बात में बिलीव करती हूँ कि जियो और जीने दो,
सही,
ना हमको कोई तपाए ना हम किसी को और वैसे वैसे वो बहुत प्यारी बच्चियाँ भी है, समझदार भी है
बहुत, और अच्छी कमाल का ये है कि उनको टीवी भी उनको बहुत अच्छा आता है जो आपके बिल्कुल आपके प्रोफेशन में है वो भी अच्छा। मैं तो बल्कि हमेशा ये कहती हूँ, आपने पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए काम किया, अब तो ज़ाहिर है ये आपका अपना सारा का सारा प्रोग्राम है और ज़ाहिर फैसले आप करती हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि जब औरतें बाहर काम करने जाती हैं तो एक तरह से वो पैरोल पे जैसे नहीं होता कि जो पैरोल पे रिहा किया जाता है तो उसको बड़े बहुत ही अच्छे बिहेवियर का मुजाहरा करना पड़ता है, उसे एक आम आदमी से ज़्यादा अच्छा बन के रहना होता है ये साबित करने के लिए कि मैं बराबर हूँ मैं, तो औरतों के साथ भी यही होता है कि उन्हें हमेशा मर्दों से ज़्यादा काम करना पड़ता है, वरना सब लोग कह देते हैं कि अरे भाई औरतें आ जाती हैं इन्हें काम वाम तो करने का शौक़ नहीं होता।
बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी ये क्या कह रही हूँ कि अगर आप अपने प्रोफेशन में भी है ना तो, और आपके साथ भी ये हुआ होगा, एक तो हमें पता नहीं क्यों इतना सीरियस नहीं लिया जाता जब हम सोसाइटी में निकलते हैं, औरतों की बात कर रही हूँ, और उसके बाद पहले तो बड़ी तीखी निगाह से देखा जाता है ये आई क्यों है
और क्या कर रही है
यहाँ आई है तो हाँ एग्जैक्टली, और अगर आई है तो शायद देखें अगर किसी ऐसे प्रोफेशन में है जैसे मीडिया के, तो वो समझते हैं मीडिया में तो सारे शौक से आ रहे होंगे और वो है नहीं, और अगर दूसरी भी चीजों पे, तो हमें जब हम अपनी जगह छोड़ के आते हैं तो हमें खुद को मनवाना पड़ता है, वो जो आप कह रही हैं डबल काम करना पड़ता है तब जाके वो चीज मानते हैं, मैं आज जिस जगह पे हूँ, यकीन करें जनाब, मैं आपको आज बताती हूँ कि शुरू में बच्चे छोटे थे तो डर डर के एक तो फूंक फूंक के कदम चले,
सही बात।
फिर उसके बाद एक जगह ये आई कि लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, ये कर रहे होंगे, और मतलब वो नहीं। जब मैं इस जगह पे आई हूँ तो अब हर एक वो तारीफ करता है, क्या बच्चे पाले, क्या ये, मतलब मैं तंज नहीं कर रही हूँ, मैं
नहीं, मुझे पता है आप जो कह रही हैं,
ये
बिल्कुल।
तो मैं हूँ ना
जी,
मैं जो मैं हूँ, लेकिन ये हर औरत उस पे गुजरी है कि हम कहाँ कहाँ खुद को प्रूफ करते हैं, फिर मनवाते फिर अच्छी माँ हूँ, अच्छी बहन हूँ, अच्छी बेटी हूँ, अच्छी अपने काम में हूँ, और तब जाके मैं आपको बताऊं, औरत जो इंडिविजुअल, देखिए एंटरप्रेन्योर बनना औरत के लिए हमारे मुआशरे में, मैं शायद एक या दो मिसालें होंगी, मुझे दूसरी मिसाल याद नहीं है, लेकिन लोग अक्सर कहते हैं जो अपने बलबूते अपने प्रोफेशन और अपने उससे इस जगह पे पहुंची हो
जी, दुरुस्त।
या तो आप बैंकर हैं या तो आप कुछ हैं, तो एक जगह पे वो अलग है, लेकिन जिस किस्म का मेरा काम है, इट इज अ बिजनेस, बिजनेस में औरत को आगे निकलना अकेले बहुत मुश्किल,
और बिजनेस भी शोबिज जो है मीडिया में, और अब तो आप फिल्म वगैरह बनाने की भी तैयारी कर रही हैं, तो अच्छा हम एक छोटा सा अपना प्रोमो सुनवा दें, फिर आपसे बातें करते हैं।
आवाज है दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी,
कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी, वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com।
आइंदा मैं प्रेफर करूंगा कि आप घर के नौकरों के साथ पर्सनल मैटर्स डिस्कस ना किया करें, ये मेरा घर है और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा।
मैं जानती हूँ ये आपका घर, आपको जताने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए भी ये सिर्फ आप ही का घर है, आइंदा एहतियात करूंगी।
मैं जानता हूँ कि आप जानती हैं कि ये मेरा घर है, ये एक वक्ती समझौता है, बस।
सही कह रहे हो, ये सिर्फ एक वक्ती समझौता है, बस।
तो ये झलक हम सफर से थी, बहुत ही कामयाबी आपका ड्रामा रहा। वैसे आपकी जाती पसंदीदा कौन सी प्रोडक्शंस हैं हम की, जो आपको खुद बहुत पसंद है?
नहीं, हम की क्या,
हम से जो आप लोगों ने ड्रामे पेश किए हैं, नहीं जो ड्रामे आप करते रहे हैं, बेशुमार ड्रामे आप लोगों ने किए, तो आपके कौन से खुद आप बहुत खुश हों जिस ड्रामे से, बहुत पसंद हो आपको?
हम सफर बहुत अच्छा था, जिसको इतनी पजीराई मिली, और जिंदगी गुलजार अच्छा है, फिर मुझे इश्क जुनू दीवानगी वो, और मनोज सलवा, बहुत से हैं, वसल,
अच्छा। वसल
वो जो है, तो बहुत से नाम ऐसे हैं कि जो सिर्फ मुझे नहीं लेकिन लोगों को मतलब मुंह जबानी याद है और लोग अप्रिशिएट करते हैं उसको।
हम सफर तो यहाँ भी बड़ा मशहूर है भाई, यहाँ अमेरिका में बहुत सुना है लोगों ने हम सफर, और बड़ा जिक्र करते हैं हम सफर का यहाँ पर।
जी 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 जी, ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका बहुत ज्यादा उसको पजीराई मिली ना।
अच्छा अच्छा सुल्ताना, हमारे साथ मियाँ वाली से मुराद खां हैं और हंगू से सुल्तान मोहम्मद, पहले सुल्तान मोहम्मद को लेते हैं। जी सुल्तान मोहम्मद साहब,
ठीक है?
सुल्तान मोहम्मद साहब,
वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम भाई,
मेहमान साहब को सलाम कहता हूँ, आपको और आपकी सब टीम वालों को दुआ सलाम कहता।
वालेकुम सलाम,
मेहरबानी।
मेहमान
साहब से पूछना चाहता हूँ कि मैंने सुना है कि पाकिस्तानी ड्रामों का जो मियार है वो इंडियन ड्रामों से आगे है, क्या वाकई दुरुस्त है? दूसरी बात यह है कि उर्दू वाले जो फिल्म होते हैं वो मेरे ख्याल में इंडस्ट्री थोड़ा डाउन है पश्तो फिल्म इंडस्ट्री के मुकाबले में, क्या वाकई दुरुस्त है?
ये तो दुरुस्त है सुल्तान मोहम्मद साहब, ये तो मैं आपको बता सकती हूँ कि पाकिस्तान में जो नई फिल्में बन रही हैं वो सिर्फ पश्तो फिल्में हैं, उर्दू फिल्म तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। वैसे सुल्तान, दूसरा पहला सवाल जो उनका था ड्रामों के बारे में, वो आप बताइए।
उन्होंने कहा कि जी हमारा जो ड्रामा है पाकिस्तान का, उसमें मैं आपको बताऊं कि साउथ एशिया में जितने भी ड्रामा हो रहे हैं प्लेज, उसमें सबसे बेस्ट होता है। इंडिया से तो बहुत ही अच्छा है हमारा ड्रामा, जो रियलिटी के करीब है, और लेकिन अभी मैं जो टर्किश ड्रामा देख रही हूँ वो अच्छे हैं। तो बहरहाल ड्रामा हमारा बहुत अच्छा है
और बहुत दिनों से बहुत अच्छा है। जब आप पीटीवी में थी उस, मैं कह रही हूँ बहुत दिनों से बहुत अच्छा है, जब सिर्फ एक चैनल था पाकिस्तान में, पाकिस्तान टेलीविजन, तब भी बहुत अच्छा ड्रामा पाकिस्तान से हुआ करता था।
जी जी, तभी भी बहुत अच्छा था और अभी भी, बल्कि अब तो दिन ब दिन अच्छा होता ही जा रहा है, अब देखें कब तक।
अच्छा सुल्ताना, मैं एक बात आपसे पूछने जा रही थी कि हमारे बहुत सारे सुनने वाले, क्योंकि ये दूर दराज इलाकों से फ़ोन करते हैं, रिमोट एरिया से, जहाँ पे केबल या डिश नहीं है, तो फिर आपकी क्या कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि इन लोगों तक भी आप लोग जो कुछ कर रहे हैं वो पहुँच सके, क्योंकि ये तो आपके ड्रामे नहीं देख सकते फिर जो कुछ हो रहे हैं।
नहीं, अभी एक चीज हुई है, मेरी डील एक बन रही है कि जो हमारे टेलीविजन है, टेरेस्ट्रियल है, उनसे बात चल रही है, अगर वो हो जाता है तो बहुत से लोगों को देखने को हमारा, हमारे प्लेस मिलेंगे
पूरे पाकिस्तान में हर जगह, इसका मतलब है।
जी जी जी, हर जगह जो रिमोट एरियाज भी हैं जहाँ पे ये केबल्स वगैरह नहीं है इतनी,
तो किस तरीके से देख सकेंगे फिर वो लोग वहाँ पर?
वो टेरेस्ट्रियल जैसे पीटीवी है ना,
जी जी,
इस तरह एटीवी भी है।
अच्छा,
तो इन दोनों से मेरी बात चल रही है। कुछ तो पहले पीटीवी ने मुझसे लिए थे ड्रामे, अब इन लोगों से एटीवी के लिए भी बात चल रही, वो भी चाहते हैं कि हमें उन इलाकों के लिए जो आपके चले हुए प्रोग्राम हैं, जहाँ पे हमारा टेलीविजन जो यहाँ पे प्राइवेट चैनल जो है वो नहीं जा सकते, तो वो चलाएंगे ताकि उन लोगों को।
अच्छा अच्छा, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है और मेरा ख्याल है बहुत से लोग बड़े खुश हुए होंगे इस बात को सुन के। ये बहुत शिकायत, जब भी हमारे पास मेहमान आते हैं तो लोग ये कहते हैं कि आप वहाँ क्यों नहीं अपने प्रोग्राम लाते हैं ड्रामों को। मुझे पता होता मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछती और इन लोगों से कहती कि मैंने ये काम किया है आप लोगों के लिए ड्रामे वहाँ तक पहुँचाने का, क्योंकि ये भी कहते हैं मुझसे सिफारिश कर दीजिएगा ज़रा हमारी। अच्छा सुल्ताना, एक और है हमारे कॉलर मियाँ वाली से, मुरीद खान। जी मुरीद खान साहब। वालेकुम सलाम।
क्या भाई?
बिल्कुल ठीक ठाक भाई।
वालेकुम सलाम जी
की साहब से गुजारिश करता हूँ कि सुल्तान हसन जी सब। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी।
मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि एक वक्त था कि ड्रामे जब लगते थे तो ट्रैफिक जाम हो जाती थी और इलाके सुनसान हो जाते थे, सब लोग औरतें वर शाम को जल्दी जल्दी खाना खा कर बैठ जाते थे टीवी के सामने, तो वो उन ड्रामे किधर चले गए हैं? बाकी ये जो आप फैशन शो करती हैं ये बिल्कुल ठीक है, करना चाहिए, लेकिन इसमें मिस्र की अंदाज और उसका जो है ना उसकी इज्जत नफ और ये इस्लामी तरीकाकार, इसको भी नजर रखना चाहिए, क्योंकि अभी
सुनिए मुरीद खान मेरी बात सुनिए। मैंने अभी अभी जब मैं ये प्रोग्राम कर रही थी तो मैं फेसबुक पर देख रही थी, इन्होंने जो ब्राइडल शो किया था जिसमें जो दुल्हन है उनके ड्रेसेस थे, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ बहुत ही ढकी चुपी दुल्हनें थी और कपड़े भी बहुत ही शरीफाना कपड़े थे, आप इत्मीनान रखिए। सुल्ताना के फैशन शोज जो हैं, सुल्ताना ठीक कहा मैंने या गलत कहा?
नहीं, वो जो आप कह रहे हैं कि पहले जो ड्रामा चलता था तो वो जो है सड़कें सुनसान हो जाती थी, वो पीटीवी का दौर था और हफ्ते में एक ड्रामा चलता था और सब लोग बैठ जाते थे। अब जब एक ही चैनल पे 32-32 ड्रामे चलते हैं दिन भर में, तो उसमें भी कभी कभी ऐसे उम्दा ड्रामा आ जाते हैं जैसे हम सफर हुआ, या लोग कहते थे हम शादियों में नहीं जाते, जिंदगी गुलजार अभी चला अगर आपने देखा हो, लोग कहते थे हम देख के फिर निकलते हैं शादी पे या किसी फंक्शंस में। तो ये एक बहुत बड़ा काम और बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक हफ्ते में एक प्ले चल के और सुनसान हो जाना गलियां इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी अब हो रही है। और एक और बात जो मैं तो हम की बात करूंगी कि एक जो हमने एक इतने अच्छे जो ड्रामे हैं किए हैं कि न सिर्फ औरतें, पहले समझा जाता था कि ड्रामे जो हैं वो सिर्फ औरतें देखती हैं, लेकिन अब मर्द न सिर्फ देखते हैं लेकिन फकरिया उनको दावतों में उस پر ڈسکشن بھی ہوتا ہے جو ایک بہت بڑا چینج ہے پاکستان میں.
میرے ساتھ ہمارے نیوز کے جو اس وقت کے جو اینکر ہیں اسد حسن بیٹھے ہوئے ہیں, بہت ہی موصوف دیوانے ہیں کرنٹ افیئرس کے, اور وہ بتا رہے ہیں مجھے اشارے سے, میں بھی دیکھتا ہوں ڈرامے اور سلطانہ صدیقی کے ڈرامے دیکھتا ہوں. تو میں نے کہا کہ ایک آپ کو مرد بتا دوں جو دیکھتے ہیں. اچھا سلطانہ, آپ کے ساتھ بہت سارا وقت ہمارا اس ٹیلی فونوں کے کٹنے میں ختم ہو گیا, اور میں چاہ رہی ہوں کہ کوئی ایسی بات جو آپ خاص طور پہ کرنا چاہیں اور جو میں نے نہ پوچھی, اور پلیز آپ ضرور کریے, لوگ چاہتے ہیں آپ کو سننا.
کیونکہ میں جس طرح سے آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہاں کہاں پہ یہ پروگرام جو ہے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی سنا جا رہا ہے اور لوگ ٹیلی فون کر رہے ہیں.
جی
تو میں ان سے صرف ایک ہی بات کہوں گی کہ پلیز خدا را آپ کی جو بچیاں ہیں اگر وہ قابل ہیں کچھ کرنا چاہتی ہیں تو ان کی ہمت افزائی کریں اور ان کو آگے بڑھنے کا موقع دیں, جو ان کے باپ بھائی یا بیٹے جو بھی ہیں تو ان کو آگے بڑھائیں. اور خواتین سے یہ کہوں گی کہ پلیز آپ لوگ اسٹرانگ رہیں, مضبوط رہیں, جو اچھی بات ہے اس کو وہ فیصلہ اپنے گھر میں منوانے کی وہ قوت رکھیں. بس یہی ایک بات تھی جو میں کہنا چاہ رہی.
ویسے سلطانہ میں ایک بات آپ سے کہوں گی کہ مطلب مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ جو ذہنی طور پہ یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں یہ آپ سچ مچ دل سے سوچتی ہیں اور محسوس کرتی ہیں, تو کیا جی تو آپ ایک کامیاب بزنس وومن بھی ہیں, کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے آپ کے لیے کہ کچھ ایسے پروجیکٹس میں آپ حصہ لیں جو مطلب کوئی بہت لمبے چوڑے نہیں, یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں نا ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, چھوٹے سے گاؤں میں جیسے بلوچستان اسکول مثلاً ایک چھوٹا سا لڑکیوں کا کھولنا جو بہت مہنگا نہ ہو, کیونکہ ہمیں لوگ فون کرتے ہیں بہت سے گاؤں سے کہ آپ پلیز ہمیں, ان کو شاید 2 لاکھ میں بھی وہ اسکول شروع کر سکتے ہیں اور چلا سکتے ہیں جو پاکستان میں, اب 2 لاکھ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے, تو کیا اس طرح کا کوئی ہم پروجیکٹ شروع کر سکتا ہے, سوچ سکتا ہے اس پروجیکٹ کے لیے؟
آپ اسکول اگر پڑھائی کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو کیوں نہیں کھول سکتے. ابھی میں نے, وہ تو چھوٹا اسکول نہیں ہے, تھر کے سائڈ پہ میر باغ گورچانی ہے ایک علاقہ جس میں لڑکوں کا بھی یعنی کوئی اچھا اسکول نہیں تھا, جس میں میری فیملی نے, ہم اپنی ماں باپ کے نام پہ, امی کا نام فخر النساء تھا, ابا کا امداد, تو فخر امداد فاؤنڈیشن ایک, اور اس میں بہت بڑا اسکول انگلش میڈیم رکھا.
اچھا.
اور وہاں پہ لڑکیوں کو اور لڑکوں کو دونوں کو پڑھائی یعنی کو ایڈوکیشن رکھی, اور یہ رکھا کہ جس جو اپنی لڑکی کو پڑھائے گا تو لڑکا جو ہوگا وہ فری ہوگا.
بہت ہی اچھے, بہت
جی جی. تو ابھی جو وہاں کی ریزلٹ آئی 2 سال پہلے, اب تو انٹر تک بچے پہنچ گئے, تو جتنے بچے تھے وہ سارے اے میں پاس ہوئے.
اچھا.
تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی. تو ہم ان کی ٹیچرز کی ٹریننگ بھی کراتے ہیں یہاں پہ لا کے, یہ آغا خان سے فلاں سے, اور یہ ہو رہا ہے, اور اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں چھوٹے علاقوں میں ہم لوگ پرسنلی, میری فیملی اور ہم لوگ کرتے ہیں.
سلطانہ بہت ہی اس وقت آپ نے اتنی اچھی بات بتائی ہے, اور کیوں نہ ہم یہ صرف ٹیلی ویژن ڈراموں کے لیے نہیں بلکہ ایک پروگرام کسی ایک گھنٹے میں ہم ان تمام چیزوں پہ بات کریں اور ان پاسبلٹیز پہ بات کریں جو ہو سکتی ہیں, خاص طور پہ لڑکیوں کی اور دونوں کی, لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے سے. تو میں بہت آپ کا شکریہ ادا کروں گی, مجھے بہت ہی خوشی ہوئی, ظاہر ہے کہ آپ کی ان تمام اچیومنٹ سے تو ہم واقف ہی تھے جو کہ ڈرامے کی فیلڈ میں ہے, ایک عورت کا اتنے آگے آنا, اتنا بڑا ایک امپائر تقریباً قائم کرنا اپنی میڈیا کی, تو میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں, شکریہ ادا کرتی ہوں, اور اپنے سننے والوں کو اطمینان دلاتی ہوں کہ سلطانہ صدیقی صاحبہ کو ہم ایک اور پروگرام میں لائیں گے اور جس میں وہ ہم سے بات کریں گی انہی ایشوز پر جو ہمارے سننے والوں کے دل کے بہت قریب ہیں. سلطانہ آخر میں کچھ کہنا چاہتی ہیں مختصر؟
نہیں, میں بس آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, وائس آف امریکہ کا, اور جو میرے سننے والے ہیں جن لوگوں نے اتنے پیار سے وہ سوال کیے جو ان کے دل کے تھے, تو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اور نیکسٹ ٹائم, یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ جب ہم کوئی پروگرام یہ جب آپ لوگ مجھ سے بات کریں گی تو ہم وہ پاسبلٹیز یا ان چیزوں پہ بات کریں گے جو لوگوں کے کوشچنس ہیں,
جو ہمارے ڈراموں اور چیزوں سے علاوہ جی معاشرے سے منسلک ہیں,
زندگی کے جو سوالات ہیں. بالکل, تو بہت آپ کا بھی شکریہ. اور سامعین بتاتے چلوں کہ مہمان ہماری سلطانہ صدیقی تھیں, ہماری پروڈیوسر تھیں نیلوفر مغل. شہناز عزیز کو اجازت دیجیے پروگرام ختم کرنے کی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.